हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। जोया किन हालातों में इस इमरजेंसी वार्ड तक आई थी, अबीर उसका अंदाज़ा लगाने लगा था। अबीर के वहशीपन के बाद और उसके कमरे से जाने के बाद जोया के बहुत तेज़ पेट में दर्द होने लगा था। क्योंकि जोया पूरी तरह से नग्न बदन थी, उसने जैसे तैसे उठकर कपड़े पहने। उसने देखा कि उसके जिस्म के एक नाजुक हिस्से से खून निकलना शुरू हो चुका था। जोया ये देखकर घबरा गई थी। उसे लगने लगा था कि शायद अबीर की ज़बरदस्ती की वजह से उसके बच्चे को कुछ हो गया है। जोया पूरी तरह से डर गई थी और उसके लिए इमरजेंसी अलार्म तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर जोया ने थोड़ी हिम्मत बटोरी और इमरजेंसी अलार्म बजा दिया। देखते ही देखते कई डॉक्टर उसके कमरे में आ गए थे। पहले तो सब डॉक्टर उस कमरे की हालत देखकर चौंक गए थे, लेकिन जब उन्होंने जोया को खून से लथपथ देखा तो उसे तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले गए, जहां उसका इलाज किया जाने लगा था। अबीर बेचैनी से वेटिंग रूम में जाकर जोया के होश में आने का इंतज़ार करने लगा था। वो बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। अबीर को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में इधर उधर कमरे में बेचैनी से चल रहा था कि तभी एक डॉक्टर दौड़ते हुए उसके पास आई और बोली, अबीर सर। अबीर पूरे ध्यान से डॉक्टर की बात सुनने लगा। डॉक्टर ने कहा, अबीर साहब, जोया मैडम के लिए हमें ओ नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त ओ नेगेटिव ब्लड पूरे हॉस्पिटल में कहीं नहीं है। ये सुनते ही अबीर का पारा हाई हो गया। वो डॉक्टर पर चिल्ला कर बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? इतने बड़े हॉस्पिटल में ओ नेगेटिव ब्लड ही नहीं है, और अगर तुम लोगों की थोड़ी सी भी लापरवाही की वजह से मेरी जोया को कुछ भी हुआ तो मैं तुम सबको इस हॉस्पिटल में बंद करके आग लगा दूंगा, जिंदा चला डालूंगा तुम लोगों को, समझे तुम? अबीर की धमकी सुनकर वो डॉक्टर भी तैश में आ गई और बोली, मिस्टर राठौर, अगर आपको आपकी बीवी की इतनी ही चिंता है तो फिर आपने उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश क्यों की? आपकी हैवानियत की कहानी जोया का बिखरा हुआ कमरा बता रहा है और आप उल्टा यहाँ खड़े होकर हमें धमकी दे रहे हैं। एक तो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उनकी जान बचाने की, और आप है कि आप अपने घमंड को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। उस डॉक्टर की बात सुनकर अबीर ने गुस्से से अपने दोनों हाथों की मुट्ठियाँ भींच ली और जोर से हॉस्पिटल की दीवार पर दे मारी। तब तक उस डॉक्टर को भी एहसास हो चुका था कि अबीर राठौर के सामने मुंह खोलकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो जल्दी ही अबीर की तरफ देखे बिना वेटिंग रूम से बाहर निकल गई और ओ नेगेटिव ब्लड की खोज करने लगी। अबीर की हालत बहुत अजीब सी हो रही थी। जोया की जो हालत थी उसके लिए वो पूरी तरह से जिम्मेदार था। अबीर को खुद पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका दिल कर रहा था कि वो अपनी गन हाथ में पकड़े और खुद को मार ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उसका एक मकसद था जिसे पूरे किए बिना वो मरना भी नहीं चाहता था। वहीं दूसरी ओर मेहर अपने घर लौट आई थी। घर आते ही मेहर का सबसे पहले तेजा से सामना हुआ। मेहर उसे देखकर एक पल के लिए असहज महसूस करने लगी, लेकिन फिर अगले ही पल तेजा के सामने खड़ी होकर रौबदार आवाज में बोली, राजवीर का कहीं कुछ पता चला? तेजा ने कहा, नहीं, राजवीर साहब का कहीं कुछ पता नहीं चल पाया है। तब मेहर तेजा पर गुस्सा करते हुए बोली, आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने तुम लोगों से कहा था मुझे राजवीर हर हाल में चाहिए। मैं उस इंसान को अपनी आंखों के सामने रखना चाहती हूँ। सब जाओ और जाकर ढूंढ कर लाओ उसे। मेहर जानबूझकर तेजा पर गुस्सा कर रही थी ताकि वो उसके सामने अपने आप को मजबूत दिखा सके, जबकि जब से वो तेजा के साथ अंतरंग हुई थी तब से उसे अजीब सा फील हो रहा था। वहीं तेजा का अब मेहर को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल चुका था। वो अब मेहर के हर हिस्से को देखने लगा था। आखिर वो तो एक मर्द ही था, और उस रात मेहर ने खुद जबरदस्ती तेजा के साथ रिश्ता बनाया था। तेजा, जो अपनी बीवी बच्चों से दूर सालों से इस शहर में रह रहा था, अचानक से मेहर के उसकी जिंदगी में आने से उसे अपना अकेलापन दूर करने का एक रास्ता नजर आने लगा था। तेजा नहीं चाहता था कि राजवीर अब मेहर की जिंदगी में वापस आए, इसलिए उसने उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की थी। बस केवल मेहर को दिखाने के लिए उसने उसे बोल दिया था कि वो राजवीर को ढूंढ रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। वो नहीं चाहता था कि राजवीर मेहर की जिंदगी में लौटकर आए और मेहर सिर्फ तेजा को ही अपने आसपास पाए। वहीं दूसरी ओर अरहम की बात मानकर अरमान ने कोई भी गैर कानूनी ना करने का फैसला कर लिया था, लेकिन वो पूरी तरह से अरहम पर भरोसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि पिछली बार जब अरहम अमेरिका आया था उसे जोया मिल भी चुकी थी, लेकिन उसने अरमान को इसकी कानो कान खबर तक नहीं होने दी थी। इसलिए अरमान अब किसी पर भी किसी भी तरह का कोई भरोसा नहीं करना चाहता। चाहता था, इसीलिए उसने अपने एक खास आदमी को, जिसका नाम हमें बाद में पता चलेगा, अरहम और अबीर की निगरानी के लिए रख लिया था। अरमान के पास इस शहर और देश से जाने के लिए 15 दिन थे। इन 15 दिनों में वो पूरी तरह से अपना जाल बिछा कर जाना चाहता था, ताकि उसे बाद में पछताना ना पड़े। और रही बात अरहम की, तो उसने सोच लिया था, एक बार ज़ोया उसके हाथ लग जाए, उसके बाद वो अरहम से उसके बोले गए झूठ का हिसाब लेगा, क्योंकि अरहम ने उसे झूठ बोला था, उसने उसे पूरी बात नहीं बताई थी। ये सारी बातें उसके दिमाग में घर कर गई थीं। अरमान कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, अरमान एक मंझा हुआ क्रिमिनल था। उसने बड़े बड़े गुनाह किए थे, उसने ना जाने कितने ही मर्डर्स किए थे, कितने लोगों को अगवा किया था, कितने ही लोगों को धमकी देकर अपना काम निकलवाया था। अरमान का उसके शहर में एक अजीब सा खौफ और रौब था, लेकिन अनुराधा मर्डर केस के बाद जैसे लोगों के दिल से अरमान नाम का खौफ निकल सा गया था। लेकिन अरमान ने ठान लिया था कि एक बार फिर वो अपना खौफ मुंबई शहर के लोगों के दिलों में पैदा करके रहेगा। अरमान ठाकुर इतनी आसानी से मिटने वालों में से नहीं था। केवल अरमान की एक ही कमजोरी थी, जिसका नाम था जोया। जोया अरमान का जुनून, उसकी जिद, उसकी दीवानगी बन चुकी थी। अरमान चाहकर भी उसे नहीं भूल पा रहा था। अरमान का बस यही मन कर रहा था कि बस एक बार उसे जोया मिल जाए, फिर वो उसे ऐसी जगह रखेगा कि दुनिया का कोई भी इंसान उसे ढूंढ नहीं पाएगा, चाहे वो अबीर सिंह राठौड़ हो या कोई और हो। जोया का इलाज चलते हुए 2 घंटे से ज्यादा हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। अबीर का सोच सोच कर बहुत बुरा हाल था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तो वो गिल्ट के मारे मर रहा था, ऊपर से जोया की ऐसी हालत उसे जीते जी जहन्नुम का एहसास करा रही थी। जब अबीर को लगा कि अब वो और धीरज नहीं रख पाएगा, तो वो उठा और इमरजेंसी वार्ड की तरफ गुस्से से बढ़ने लगा। उसका इरादा था सभी डॉक्टरों को अच्छी तरह से फटकारने का, क्योंकि अबीर बिल्कुल भी सब्र नहीं रख पा रहा था। इससे पहले कि अबीर किसी को कुछ कहता, इमरजेंसी वार्ड का गेट खोलकर एक डॉक्टर बाहर आई। उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। उसका चेहरा देखकर अबीर कुछ परेशान हो गया और हल्का सा सहमतते हुए बोला, क्या हुआ, सब ठीक है ना, मेरी बीवी तो ठीक है ना? डॉक्टर ने कहा, मिस्टर राठौड़, देखिए, हमें ओ नेगेटिव ब्लड मिल गया है और हमने मैडम को वो चढ़ा भी दिया है, लेकिन सर, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैडम का हैवी ब्लड लॉस होने के कारण हमें उनके बेबी को डिलीवर कराना पड़ा, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो मैडम के पेट में सेप्टिक फैलने के चांसेस काफी ज्यादा थे, जिससे उनकी जान बचाना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता। इसीलिए हमें मजबूरन उनके बेबी को डिलीवर कराना पड़ा। बेबी की प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के कारण अभी हमें बेबी को अगले 3 महीनों तक अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा।
ये सुनकर अबीर बहुत हैरान हो गया और खुद को संभालते हुए बोला, डॉक्टर साहब, आप कहना क्या चाहती हैं? बेबी 3 महीनों तक अपनी माँ के बिना कैसे रह सकता है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तब डॉक्टर बोली, अबीर सर, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अगर किसी बेबी की प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है तो उसे स्पेशल केयर में रखा जाता है। ये एक तरह से माँ की कोख की तरह ही होता है, लेकिन बस फर्क इतना है कि वो इंसानों के द्वारा बनाया गया है। पूरे 3 महीनों के लिए आपके बेबी को उसमें रखना होगा, और जब बेबी पूरे 9 महीने का हो जाएगा, उसके बाद हम उसे आप लोगों के हवाले कर सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर अबीर को समझ ही नहीं आ रहा था। अबीर की हालत काफी अजीब हो रही थी, ना तो वो खुश था और ना ही दुखी। उसे किस तरह से रिएक्ट करना है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब अबीर अपनी आंखों में आए पानी को पोंछते हुए बोला, तो क्या मैं बेबी से मिल सकता हूँ? तब डॉक्टर बोली, सर, लेकिन आप बेबी को गोद में नहीं ले सकते हैं, आप केवल दूर से उसे देख सकते हैं। अबीर ने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ मेरी बीवी कैसी है। तब डॉक्टर बोली, सर, उनकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई है, तो अभी उन्हें भी अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, तो अभी अगले 48 घंटों तक आप उनसे नहीं मिल सकते हैं, जब तक कि वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाती हैं। उनके होश में आने के बाद ही हम आपको बाकी की डिटेल दे पाएंगे। अबीर ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, आप एक काम करें, तब तक आप मुझे बेबी दिखा दें। तब डॉक्टर अबीर को कई कमरों से होते हुए एक बड़े ही खूबसूरत बच्चों के कमरे में ले गई, जहां पहले से ही काफी सारे बच्चे थे, लेकिन उसमें अबीर का बच्चा कौन सा था, उसका उसे अंदाज़ा नहीं था। तभी डॉक्टर ने अबीर से कहा, इन सब में आपका बच्चा स्पेशल केयर में रखा हुआ है, वो देखिए अबीर साहब, आपकी बेटी। अबीर का शौक से बुरा हाल था, इसका मतलब साफ था कि जोया को बेटी हुई थी। एक टक बेबी की ओर देखकर अबीर की आंखों से अपने आप ही आंसू निकल पड़े थे।